Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chowdhury and with me is my co-anchor Ambrish Saxena.
Namaskar. Aarthik khabron ke karyakram Market Mantra mein aapka swagat hai. Aadhe ghante ke is karyakram mein hum desh aur duniya se aarthik, vyaparik aur share bazaar ke taza samachar aap tak layenge aur un par charcha bhi karenge. Hamare sath khabron par charcha ke liye studio mein aamantrit hain aarthik patrakar Siddharth Singh. Siddharth ji, karyakram mein aapka swagat hai.
Dhanyawad, aap dono ko bhi namaskar.
Aur ab headlines ke sath hain Arjun Chowdhury.
Prime Minister Narendra Modi inaugurates Advantage Assam 2.0 Investment and Infrastructure Summit in Guwahati, says India is driving its manufacturing sector in mission mode. Benchmark domestic indices end mixed, Sensex adds 148 points, Nifty settles below 22,550, and major Asian indices register losses, European indices trade in positive territory.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया. उन्होंने कहा कि भारत मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में मिशन मोड पर काम कर रहा है. घरेलू शेयर बाजारों में आज मिलाजुला रुख रहा. सेंसेक्स में 148 अंकों की तेजी दिखाई दी. निफ्टी 22,550 अंकों के नीचे बंद हुआ और एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में गिरावट देखी गई. यूरोप के बाजार बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं. और आज की पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में एडवांटेज असम के दूसरे संस्करण में निवेश और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि असम दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के प्रवेश द्वार तथा असीमित संभावनाओं का केंद्र बना हुआ है. राजनयिकों, प्रमुख उद्योगपतियों, विदेशी प्रतिनिधियों की विशाल सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि असम पूर्वी भारत का एक विनिर्माण केंद्र बनेगा. उन्होंने इस रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाने का आग्रह उद्योगपतियों से किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार पूर्वोत्तर में संपर्क बढ़ाने और ढांचागत सुधार पर विशेष ध्यान दे रही है. उनकी सरकार इस क्षेत्र में स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ बनाने पर भी काम कर रही है. श्री मोदी ने कहा कि भारत कम लागत की विनिर्माण प्रक्रिया के लिए मिशन मोड पर कार्य कर रहा है. प्रधानमंत्री ने कहा कि असम सरकार ने व्यवसाय को सुगम बनाने के लिए एक वातावरण सृजित किया है. असम सरकार ने उद्योगों के लिए श्रेष्ठ नीतियां तैयार की हैं. इसने वर्ष 2030 तक 1.5 अरब की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और पूर्वी भारत तथा पूर्वोत्तर भारत का विकास इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं. इसी समिट में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार पूर्वोत्तर के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है और असम विकास की इस यात्रा का नेतृत्व कर रहा है. उन्होंने कहा कि जगी रोड में सेमीकंडक्टर प्लांट से असम सेमीकंडक्टर का प्रमुख क्षेत्र बन जाएगा. सिद्धार्थ जी, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है देश के विकास की दृष्टि से. और एडवांटेज असम का जो दूसरा संस्करण है उसमें प्रधानमंत्री ने बहुत ही उत्साहवर्धक घोषणाएं की हैं. आप इसमें और क्या जोड़ना चाहेंगे?
नहीं, देखिए अम्बरीश, शुरू से ही जब से ये सरकार आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में, उनका फोकस रहा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया और सभी डिपार्टमेंट्स को या मिनिस्ट्रीज का एक फोकस्ड अटेंशन है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, चाहे वो बजटेड बजट को लेके हो, मतलब स्पेसिफाइड बजट एवरी डिपार्टमेंट, और यहाँ तक कि हर मंत्रालय और हर मंत्री को ये कहा गया है कि वो अपनी तरफ से नॉर्थ ईस्ट का दौरा रेगुलरली करें, वहाँ पे ये देखें उनके जो डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उनका क्या प्रोग्रेस है, किस तरह कारगर वो जो है तरीके से उनको जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और शायद उसी का ये नतीजा है कि जो आज प्रधानमंत्री ने जो एडवांटेज असम वहाँ इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर समिट की है। और अगर आप देखेंगे आज असम अकेले, एक तो नॉर्थ ईस्ट जो है द्वार है साउथ ईस्ट एशिया के लिए, और हमारी उस तरफ बहुत फोकस रही है अभी तक, तो मुझे लगता है उस सब को अगर जोड़कर देखें तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट आज जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए और उन्होंने जो बिजनेस लीडर्स वगैरह को न केवल इंडिया के बिजनेस लीडर्स बल्कि दुनिया के बिजनेस लीडर्स को भी उस तरफ आकर्षित करने की कोशिश की है। और उसमें एक अगर आप अकेले असम को देखेंगे तो आज तकरीबन असम अकेले स्टेट की जो इकॉनमी है वो तकरीबन 6 लाख करोड़ की इकॉनमी हो चुकी है। और जहाँ तक वहाँ पे आप देखेंगे बहुत जोर है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, चाहे वो रोड्स को हो, रेल का हो, रेल का भी हम बड़ा एक जाल बिछा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उस तरफ। और उसी तरह से चाहे आप देखेंगे एयरपोर्ट्स को लेके, क्योंकि एक नॉर्थ ईस्ट का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है कनेक्टिविटी, वहाँ पहुँचना, तो इसीलिए उस तरह के रोड रेल और एयर कनेक्टिविटी के ऊपर इस सरकार का बहुत फोकस रहा है। इसीलिए शायद मुझे लगता है कि आज से कुछ साल पहले जब वहाँ 5-6 एयरपोर्ट्स थे, आज मुझे लगता है तकरीबन 15-20 एयरपोर्ट, 20 के करीब एयरपोर्ट, मतलब एयरफील्ड।
सरकार ने अभी घोषणा भी की थी कि जितने भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं सब में डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली से करने की बात है,
और हर एक के पास मतलब एक एयरपोर्ट ऐसा हो जो फुल फ्लेज्ड, जो पूरी एक प्रॉपर किसी भी बड़े जहाज को जो है वहाँ पे उतारा जा सके, तो शायद उसी का नतीजा है। और शुरू से अगर आप देखेंगे इस सरकार का, अगर जब 2014 में आई तो मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ा फोकस एरिया रहा है, मेक इन इंडिया, तो शायद वो भी एक इसीलिए असम उस वजह से भी एक फोकस है हमारा नॉर्थ ईस्ट। और जहां अभी आपने जो बोला समाचार में भी कि अश्विनी वैष्णव, तो मुझे याद आता है तकरीबन 6 जो हिंदुस्तान में हम 3 सेमीकंडक्टर की जो फैसिलिटीज़ बना रहे हैं उसमें से एक जो सबसे बड़ी, वन ऑफ द बिगेस्ट इज कमिंग अप इन असम, तो इसलिए मुझे लगता है शुरू से ही फोकस रहा है। और नॉर्थ ईस्ट को जब तक एक शुरू से शिकायत रही है ना कि नॉर्थ ईस्ट का जो है को इग्नोर करते हैं हम लोग यहाँ से बैठ के दिल्ली से जो है, तो शायद वो कहीं ना कहीं उस कमी को दूर करने के लिए का भी प्रयास है।
सिद्धार्थ, यू मेंशन्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट्स लिंकेज टू मैन्युफैक्चरिंग एंड क्रिएटिंग दीज मैन्युफैक्चरिंग हब्स। आर वी लुकिंग एट गुवाहाटी एज दैट हब और अदर पार्ट्स ऑफ असम व्हिच विल बी सीन एज अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन? I can understand why it is for a supply chain, but what about the movement of labor, finding skilled labor to be able to service the semiconductor plants in Assam itself? How do we see the movement of labor to really give this an impetus that we are all hoping for?
Yeah, as Arjun, a very good question, I would say. See, one is creating a physical infrastructure. The other is how do you bring in what the kind of industry like semiconductor? It's a very specialized industry. So I think the government of Assam, the point to be noted is here is that they are working specifically in the field of education and skill development. So probably that is why, and the reason for that is that once you have a physical infrastructure, the mindset that it's difficult to reach the northeast, you know, the terrain that kind of we have there. So once that is gone, then you create this kind of infrastructure in terms of making good education available, you know, the kind of facilities for education, as well as the government of Assam is focusing in a very big way on skill development. And not only Assam, I think the other states of Northeast also, government of India is especially running programs trying to bring in as much as impart vocational training to people in those states and in those regions. So I think in that way, it's a two-way. One is obviously the government of India is trying to create fiscal, and the effort being made by the state government of Assam.
In more news, Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said that the free trade agreement between India and the United Kingdom will prove to be a major milestone in the relations between both the countries. Mr. Goyal today held a meeting with a delegation led by the UK Secretary of State for Business and Trade, Jonathan Reynolds, in New Delhi. During the meeting, both sides took stock of the progress made so far in accelerating efforts towards reaching a fair, mutually beneficial and a balanced free trade agreement. Speaking to the media in New Delhi, Mr. Goyal said that the UK Business and Trade Minister Jonathan Reynolds visited India for the first time after the formation of the new government. He added that during the meeting, there was a very positive discussion on various issues. Siddharth, we have seen that these negotiations have been taking place since 2022. And now Jonathan Reynolds says that we have a stable government and we can actually carry out a free trade agreement. What kind of leverage do you see us imposing so that this free trade agreement bears fruition? Is it because of Brexit and inflation in the UK that maybe India can be the favorable partner when it comes to UK-India coming out with this free trade agreement?
See, Arjun, I think as far as coming up with a free trade agreement or we agreeing to a free trade agreement between both the countries, UK and India, I think we've had their... from our side, obviously, our Commerce and Industry Minister, Mr. Piyush Goyal, and from their side, from the UK side, we had Jonathan Reynolds. But I think these kind of free trade agreements or even other agreements, I think they usually are very long-drawn process. So I think, yes, the good part is that both the ministers today met, and the outcome or the initial discussions they had today, because these talks were almost, I think they are again restarting after a gap of 8 months. So I think the best... good part is obviously they've come back to the table, and I think the discussions will now start on a serious note between the officials from both these countries.
Trump policy on tariffs, do you see that bearing as well?
That may have a bearing, but I don't think it will in any way speed up the entire process, because these are very hard negotiations. Free trade agreements are usually very, are very threadbare and so are very something which both the sides are not very easy to, give up their position. So I think it will take time, and the same was reflected if you hear Jonathan Reynolds, so when asked that he, to give a time frame, would it be concluded within this, the next financial year. So he said it will be difficult to give a time frame, but yes, we are coming back to the table. We are serious, and so discussions will start. But yes, it's a positive step, and such agreements always take time.
Concessions also being made on some product items like whiskey and chocolates that the UK is making when it comes to exporting their goods into India. How do you see India also is demanding that visa relaxations for businesses should be carried out? There has to be some parity in terms of tariff imposition. How do you see that short term rolling out right now?
So Arjun, that's what I have said. See, I don't think FTAs, anything would be rolled out in short term. So it would be a very comprehensive agreement, because once you draw out it, and these kind of agreements, they last for a longer period. So I think, obviously, yes, as you mentioned those items, there have been long-standing demands for these kind of markets, market access from both the sides. But I think, yes, we will have to wait for the outcomes, and we shouldn't expect them to happen immediately. But the good sign or the positive sign is that even both the sides have met, they are ready to go back to the discussion table, and probably things will move on from here.
लेकिन सिद्धार्थ, अगर हम भारत के निर्यात की दृष्टि से देखें, तो वो कौन से क्षेत्र हैं प्रमुख रूप से जिनमें भारत को फायदा होने की गुंजाइश है?
नहीं, देखिए, फायदा और नुकसान डिपेंड करेगा किस तरह का एग्रीमेंट अम्ब्रीश होता है, क्योंकि अभी बहुत इनिशियल डिस्कशंस हैं. और अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके का अगर आप देखेंगे, तो बहुत दिन, जैसा अर्जुन ने भी बोला, 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी, और पिछले 8 महीने से हम कहीं नहीं जा रहे थे, कहीं आगे बढ़ नहीं रहा था. तो मुझे लगता है, चूंकि अभी ये डिस्कशंस बहुत अर्ली स्टेजेस में, तो ये कहना कि हमें किस में फ़ायदा होगा, फ़ायदा आई थिंक दोनों साइड्स को होता है, तभी ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इस तरह के हो पाते हैं.
And if you look at our trade figures right now, we are in trade surplus, and it's more than $20 billion. In fact, year on year, it's only going up. But I think this is a more structured approach, so that it's a long-term
benefit for both the nations.
Bilkul, as you rightly said, since the surplus is on our side, so all the more difficult. So all the more it will take time.
तो जैसे कि ट्रंप की जो टैरिफ की पॉलिसीज़ का जो जिस तरह का संकट दिखाई दे रहा है पूरी दुनिया में, तो आपको क्या लगता है कि जैसे अभी यूके के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, इस तरह के यूरोप के और देशों के साथ या जैसे साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी अभी हमें होने की संभावना दिखाई दे रही है?
नहीं, देखिए एक बात अमरीश, अगर आप देखें कि पहले हम लोग बात करते थे ना मल्टीलैटरलिज्म की, कि सारी दुनिया एक है, आज वापस अगर आप पुराने समय की तरफ हम लोग लौट रहे हैं जहां हर देश अपने को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है टैरिफ्स के माध्यम से या किसी, तो एवरीबडी इज ट्राइंग टू बिल्ड अ वॉल. तो आई थिंक इन दैट, इफ यू लुक इट इन दैट कंटेक्स्ट, यस, ये बात सही है कि ये इस तरह के एग्रीमेंट्स किसी भी दो देशों के बीच में जो होंगे उनकी एक, तो मुझे लगता है अब शायद ये जो निगोशिएशंस की जो रफ्तार है उसको गति मिलेगी जब इस तरह का माहौल हो जहाँ पे अमेरिका जैसा बड़ा देश हर दुनिया के हर देश को थ्रेटन कर रहा है कि हम टैरिफ लगाएंगे, अगर आप हमारे ऊपर टैरिफ, आपकी टैरिफ हमारे आइटम्स पे ज़्यादा है तो हम आपको उसी में तरह की टैरिफ आपके आइटम्स पे. तो मुझे लगता है, लेकिन ये जो ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं इनमें अमरीश, जो एक बड़ी बात यह है कि जनरली जल्दी होते नहीं है, टाइम लगता है और ये इतना आसान नहीं होता क्योंकि इनकी जो मियाद होती है फिर वो लंबे समय तक रहती है. तो आप जब एग्रीमेंट एंटर करते हैं तो आप कुछ टाइम, मतलब एक टाइम ड्यूरेशन के लिए करते हैं, तो आप ये देखते हैं कि आगे आपके इंटरेस्ट कितना इंपैक्ट होंगे.
जी.
In more news, the Employees Provident Fund organization added over 16 lakh net members during December last year. This represents an increase of almost 9.7% in net members as compared to November 2024. This also represents a growth of 2.74% in net payroll additions on an annual basis as compared to the same month previous year. According to the Ministry of Labour and Employment, EPFO enrolled around 8.47 lakh new subscribers in December 2024. The ministry said that 4,85,000 new subscribers were added in the 18 to 25 age group. The data also unveiled that around 2,22,000 new female members were added in December 2024. Siddharth, your views on these figures, both in terms of gender and age in the demographics when it comes to labor statistics and benefits to those who are joining the job market.
See, any EPFO data, whenever we see monthly data, when we see of new members being added to the becoming part of the EPFO this net, so it's a very the straight outcome is that the new number of new people joining jobs, getting jobs. So in any case, it's a very, very positive, especially as you mentioned, the females and the younger age group, 18 to 25 age group. So it's a very positive development. And I think that is what the focus of the government is, to create more and more jobs. So this obviously is a reflection of that.
और इस दृष्टि से भी जैसे कहा ने अपने jobs ज़्यादा रोजगार बन रहे हैं और ये सरकारी सेटअप के अंदर सरकारी विभागों में बन रहे हैं, तो ये और भी ज़्यादा खुशी की बात है.
नहीं अमरीश, इसमें जो ये डेटा होता है इसमें ज़्यादातर जो है निजी क्षेत्र के ही लोग कवर होते हैं EPFO में, तो ये इसलिए और भी ये जो है पॉजिटिव बात है.
जी. और चलते हैं शेयर बाजारों का हाल जान लेते हैं. घरेलू शेयर बाजारों में आज मिला जुला रुख रहा और कारोबार एक दायरे के अंदर सिमटा रहा. 30 शेयरों पर आधारित बंबई शेयर बाजार के सेंसेक्स में 5 दिन की गिरावट के बाद 148 अंक यानी 0.2% की तेजी दिखाई दी. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी लगभग स्थिर रहा और सिर्फ 6 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 22,547 अंकों पर आ गया. बंबई शेयर बाजार के व्यापक बाजार ने भी आज नकारात्मक प्रदर्शन किया. मिड कैप सूचकांक 0.5% से अधिक गिरा जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में 0.4% की गिरावट दर्ज की गई.
Benchmark domestic equity indices ended mixed in a range-bound trade today. The 30-share index of the BSE snapped its 5-day losing streak and added 148 points, 0.2% to close at 74,602. Conversely, the NSE ended on a flat note with a marginal fall of 6 points to settle at 22,547. The broader market indices of the BSE ended in negative territory. Mid-cap index slipped over 0.5% and the small-cap index dropped over 0.4%. In the Sensex pack, 17 out of 30 companies logged gains. Among the top gainers, Mahindra and Mahindra rose over 2.6%, Bharti Airtel increased over 2.5%, and Bajaj Finance added over 1.6%. Conversely, among the top laggards, Sun Pharma fell over 1.5%, Power Grid slipped over 1.2%, and TCS dropped almost 1.2%. In sectoral indices at the BSE, 14 out of 21 sectors ended down. Among the top laggards, metal lost almost 1.7%, oil and gas slipped over 1.3%, and realty fell over 1.2%. In the top gainers, telecom advanced over 0.6%, auto rose over 0.4%, and consumer durables added more than 0.3%. Meanwhile, the overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,253 companies declined, 1,678 companies advanced, and 131 remained unchanged. At the NSE, 12 companies hit their 52-week high, while 186 hit their 52-week low. Here is something for our listeners to bear in mind. The Indian stock exchanges, BSE and the NSE, will be closed for trading tomorrow on account of Mahashivratri 2025. This will mark the first trading holiday of the 2025 calendar year, which includes a total of 14 stock market holidays as per the holiday list announced by the exchanges. Trading in the equity, equity derivatives, securities lending and borrowing, and currency derivative segments will also remain suspended tomorrow. However, the commodity market will remain closed during the morning session but will resume trading activities from 5 p.m. to 11:30 p.m. in the evening shift.
और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में आज एक डॉलर की तुलना में रुपया 50 पैसे कमजोर होकर 87.20 रुपए पर बंद हुआ. अमरीकी टैरिफ को लेकर जारी अनिश्चितता और महीने के अंत में आयातकों में डॉलर की मांग बढ़ने के चलते रुपए में कमजोरी दिखाई दी. दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक समाचार तैयार किए जाने तक अंतर दिवसीय कारोबार में 106.59 पर चल रहा था. सिद्धार्थ जी, क्या कहेंगे शेयर बाजार के आज के हाल पे? इस अगर हम देखें पिछले कई दिनों के मुकाबले तो एक अच्छी खबर है, लेकिन कोई बहुत ही सिग्निफिकेंट मूवमेंट नहीं दिखाई देता.
नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमरीश. देखिए, पाँच दिन के जो बाज़ार पाँच दिन से गिर रहा था, आज कम से कम एक अच्छी बात है कि पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुआ. लेकिन अभी ये कहना, जो करंट सिनेरियो है जिसमें मार्केट्स पे जो इम्पैक्ट है, वो जो एक तो ट्रम्प साहब के आने के बाद से जो उनके टैरिफ की जो उन्होंने दे रखी है, जो धमकी दे रखी है कि वो ट्रम्प जो है टैरिफ्स बढ़ाएंगे ऐसे देशों पे, खासकर जिनकी टैरिफ्स उनके सामानों पे ज़्यादा है. और उसकी पुष्टि उन्होंने दोबारा की है जब उन्होंने कहा है कि जो मेक्सिको और कैनेडा पे जो टैरिफ अनाउंस किए थे उनकी जो डेट है उनको लागू होने की, वो 4 मार्च. तो कल उन्होंने उस बात को रिट्रेट किया है, डिस्पाइट मेक्सिको एंड कैनेडा टेकिंग स्टेप्स टू स्टॉप इलीगल इमिग्रेंट्स एंट्रिंग यूएस, उसके बावजूद उन्होंने कहा है कि वो जो टैरिफ्स उन्होंने हाई टैरिफ्स अनाउंस किए हैं तकरीबन 25%, वो जो है वो मेक्सिको और कनाडा पे 4 मार्च से इम्प्लीमेंट हो जाएंगी. और इसके साथ साथ मुझे लगता है इस हफ्ते में मार्केट्स दो डेटा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक तो यूएस में आएगा जो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा है जो, और दूसरा हमारा Q3 का GDP डेटा फ्राइडे 28 तारीख को जो है NSO अनाउंस करेगा. तो मुझे लगता है वो भी मार्केट की दिशा को थोड़ा बहुत तय करेंगे. और जहाँ तक US का जो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा है, वो इसेंशली गुड्स एंड सर्विसेज जो वहाँ के लोग खरीदने के लिए जो पैसे देते हैं, वो बेसिकली वहाँ का इन्फ्लेशन ट्रैक करता है. तो उससे आगे एक तो इन्फ्लेशन की ट्रेजिक्ट्री क्या होगी US के इन्फ्लेशन की, उसका हमको थोड़ा एक अंदाज़ा लगेगा. साथ साथ फेडरल रिजर्व की क्या नीति हो सकती है आने वाले टाइम में. दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है हमारे लिए है डोमेस्टिक फ्रंट पे, क्योंकि Q2 का GDP हम सबको याद है कि चूंकि इस साल ये चुनावी साल था, तो हमारा इस साल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर उस तरह का हो नहीं पाया था, स्लो डाउन था कैपिटल, उसकी वजह से Q2 का जो GDP था जो वो जुलाई अगस्त सितंबर वाला जो GDP डेटा था वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था, 5.4 आ गया था. तो और अब ऐसी आशा की जा रही है कि हम लोग तकरीबन 6-6.5 के आसपास जो ये रिमाउंड करेगी ग्रोथ अक्टूबर दिसंबर वाला जो क्वार्टर का जो GDP डेटा अनाउंस होगा.
Siddharth, very briefly, because of the tariff policy metals and the IT Nifty has been hit. How do you see their earnings in the fourth quarter as a result of this policy and therefore its valuation? Because metals has fallen by 1.454%, and IT fell only marginally by 6 points, but Infosys has a weightage of 8% on the Sensex.
See, Arjun, as far as metal stocks or even IT, I would say, see, Q3, we are going to see a rebound in our own growth. Plus Q4 also, I think the trajectory is going to be upwards. We are going to improve from here. So I think the worst for Indian economy or the worst in terms of is over for us. Plus the big point that I would like to draw your attention is that in the budget, see, as currently we were, if you talk to experts, most of the people say this growth is also a large part of it is driven by capital expenditure, which the government is doing. Private investment is still not happening at that pace at which it should be happening to, you know, support this growth. So now what has happened in the budget, government has given a huge consumption boost. As we all know, the income tax limit has been raised to 12 lakh.
But this is the export story.
Yeah, I agree. So how would even that happen? Metals would also, until unless there is consumption boost, until so only then you will have that kind of, everything is connected to each other. So once you boost, until unless you boost consumption, private investment won't happen. So that, but I don't see things slipping out in a very big way from here.
जी, और चलते हैं एशिया के अन्य बाजारों और यूरोप का हाल भी जान लेते हैं. एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज गिरावट का दौर दिखाई दिया. जापान में टोक्यो शेयर बाजार का निकेई 1.4% और हांगकांग का हैंगसेंग 1.3% से अधिक गिरा. चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में गिरावट 0.8% और सिंगापुर के स्टेट्स टाइम्स इंडेक्स में गिरावट 0.3% की रही. दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.5% से अधिक गिरा. उधर यूरोप के प्रमुख शेयर बाजार दिन के कारोबार के दौरान अच्छा प्रदर्शन करते दिखाई दिए. अंतिम समाचार मिलने तक लंदन का फुटसी 0.3% और जर्मनी का डेक्स 0.1% नीचे चल रहे थे. फ्रांस का कैक लगभग स्थिर रहा. सिद्धार्थ जी, आप क्या कहेंगे कि यूरोप के बाजार आज अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए?
सी अम्बरीश, आई थिंक currently stock markets, most of the markets, if you look even Asian markets or you look at the European markets, I think scenario is basically as our own Indian markets. Everything would be range bound and things would take some time to settle down. Mm-hmm. Because the Trump uncertainty coupled with Russia, Ukraine, plus the Middle East. So I think all this, until unless all these different stories settle down, I don't think we will have much positive mm-hmm. news.
Moving on to the U.S. stock market, U.S. stocks displayed mixed trend yesterday. NASDAQ Composite fell 1.2%, dragged by big technology stocks. S&P 500 lost 0.5%, making it its third straight day of declines, while Dow Jones Industrial Average ended nearly flat with a positive bias. Very, very briefly, why did tech stocks fall? 237 points NASDAQ has fallen.
I think there is a lot of feeling that, you know, those IT sector, because of the inherent challenge coming from or uncertainty coming from the Chinese markets. So I think that is essentially driving this jitteriness in the US technology stocks.
Let's have a look at the crude oil market. Brent crude was trading low by 0.3% at $74.55 per barrel. And WTI crude fell 0.2% to trade at around $70.55 per barrel when reports last came in.
और सराफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था. अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.02% बढ़कर 86,460 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था. वहीं चांदी 0.63% गिरकर 95,030 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक अप्रैल 2025 में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 0.05% बढ़कर 86,225 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था. वहीं मार्च 2025 में आपूर्ति की जाने वाली चांदी का वायदा मूल्य 0.59% गिरकर 94,530 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर था. और सिद्धार्थ जी, क्या कहेंगे सोने की जो बढ़त है उसके बारे में?
नहीं अमरीश, मेरे ख्याल ये कहने की बात नहीं है, सोने की चमक कभी भी फीकी नहीं पड़ती, और जब खासकर जब स्थितियां बहुत चैलेंजिंग होती हैं तो हमेशा सोना जो है वन ऑफ द सेफेस्ट बेट्स।
और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। सिद्धार्थ जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और प्रमुख खबरों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
And before we close, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates the Advantage Assam 2.0 Investment and Infrastructure Summit in Guwahati, says India is driving its manufacturing sector in mission mode. Benchmark domestic indices ended mixed. Sensex adds 148 points. Nifty settles below 22,550. And major Asian indices register losses. European indices trade in positive territory. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra.